وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ابھی آپ لوگوں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 سے 93 تک کی تلاوت سنی ان آیات میں ہم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ دیکھا کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانے کے لیے مشاہدہ حق کیا اور کس نتیجے پہ پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ انسانیت کا اصل کیا ہے ہم کہاں سے شروع ہوئے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اسی طرح سے کچھ اور سوالات جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں کچھ لوگ کسی ایک اینگل سے پکارتے ہیں کوئی دوسرے رنگ سے پکارتا ہے تو اصل میں سب باتوں کی حقیقت کیا ہے अगर आयत 74 को देखें तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वइस काल इब्राहीम ली अबीही आज़र, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह का नबी। अल्लाह सुब्हान तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला इंसान जिसको अल्लाह तआला ने अपने हाथ से बनाया, उनका नाम आदम है। क्रिश्चियन भी उनको मानते हैं, ज्यूज़ भी मानते हैं। हर पुराना मज़हब जिसका आगाज़ बिल्कुल इल्हामियत के साथ हुआ, वो मानते हैं कि एडम, आदम या कुछ और भी उसको प्रोनाउंसिएशन कर ले, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी सिलसिले में थे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया, फरिश्तों के सामने उनको पेश किया, मारूफ वाक्य कुरान पाक में 7-8 जगह पे आता है कि मैं इंसान को दुनिया के लिए पैदा कर रहा हूँ। वइस काल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, इंसान को बनाया गया था इस ज़मीन के लिए। आज हम सब साइंस की नज़र से देखें, कैमरों से देखें, हिबल से देखें या बड़े बड़े टेलीस्कोप से देखें, ये कायनात बहुत हद तक हमारे ऊपर डिस्कवर हो चुकी है। कुछ चीज़ें पहले दौर में सिर्फ सोची जाती थी, अब उसको अपनी आंखों से लोग देखते हैं। हत्ता कि आज से कुछ 50-60 साल पहले चांद पे कदम रखने का दावा भी किया गया। पूरी कायनात को घूम फिर के देख लीजिए, सिर्फ ज़मीन एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान आबाद है। ये हमारा ईमान है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ आती है कि ज़मीन पे इंसान बसता है, बाकी सैारे सितारे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ इरादा रखने वाली या इख्तियार रखने वाली कोई मखलूक नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि चांद पे जिन रहते हैं या चांद पे कोई इंसान रहता है। कोई चला जाए अल्लाह की कुदरत से साइंस के मीन्स यूज़ करके, वो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह सुबहाना तआला ने इंसानों के लिए ये ज़मीन चूज़ की थी। इसीलिए आप देखते हैं कि इस कायनात के अंदर दिन रात तब्दीलियाँ आती हैं। कभी आप सुनते हैं फलां सितारा टूट गया, फलां सितारा टूट गया, कभी कुछ कभी सुनते रहते हैं ना। ये कायनात जिस तरह बनी है ना, इसी तरह से टूटती जा रही है। सिवाय ज़मीन एक अल्लाह ताला की एक ऐसी जगह है कि जहाँ चूँकि इंसान बसते हैं, और इंसानों के पास इरादा भी है, इख्तियार भी है, इसलिए इसके टूटने और इसके बनने का निज़ाम दूसरे सियारों और सितारों से फ़र्क है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में अपने हाथ से पैदा किया, उनके अंदर अपनी रूह डाली, फिर उसके बाद फरिश्तों को सजदा करवाया आदम के आगे। क्यों? कि इस दुनिया में इंसानों के जितने भी काम होंगे ये फरिश्तों की मदद से होते हैं। हत्ता कि अगर आप सुई में धागा डालते हैं ना, तो असल में फरिश्ता डालता है। हमें बाहर लगता है हमने किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक हिडन, एक ऐसी फोर्स बना रखी है कि जो हमारे काम करने में मदद करती है। इसी तरह हमारी आँख की हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते, हमारे कान की हिफाजत के लिए फरिश्ते आगे पीछे। सूरत रात में जिक्र है कि इंसान को आगे पीछे से फरिश्तों ने घेरा हुआ है, तो यहाँ तक रिवायत आती है कि 10 फरिश्ते एक इंसान के ऊपर कमोबेश लगे होते हैं। कई दफ़ा आप देखते हैं कि बच्चे को चोट लगती है और माँ एकदम क्या कहती है, शुक्र इसकी आँख बच गई। बिल्कुल आंख के करीब कहीं लगती है, लेकिन आंख में नहीं लगता, तो असल में ये फरिश्ते का बचाव होता है। इतनी बात समझ गए। अब क्या हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में जो चीज़ें उनके काम की थी ना, वो सब सिखा दी। सूरह बकरा के शुरू में हम लोग ये पढ़ जाते हैं कि अल्लाम आदम अलस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ताला ने दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कुर्सी, मेज़, चीज़ें, खाना पीना, फ्रिज, यानी आप कह लें कि दुनियावी उलूम आदम अलैहिस्सलाम के अंदर डाल दिए थे। उनके अंदर इतनी अकल थी, हर चीज़, आज जो बड़े बड़े इल्म है साइंस के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब का जो जीन था, जो इसका बेसिक रूट थी, वो आदम के दिमाग में डाल दिया। और आदम अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें इस दुनिया के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। इस दुनिया में डिस्कवरीज करेंगे, साइंस सीखेंगे, दुनिया की तालीम हासिल करोगे, तो तुम दुनिया में भटते जाओगे। ये आदम के नाते इंसानों में ये चीज़ डाल दी। उसके बाद क्या हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहाना तआला ने जन्नत दिखाई, जिसको हम जन्नत कहते हैं, कोई नर्क कहते हैं, कोई हेवन कहते हैं, कोई उसको पैराडाइज कहते हैं। कहने का मकसद ये कि मुख्तलिफ मजहबों में उसका नाम मुख्तलिफ है, पैराडाइज है या फिर फिरदौस है, वो एक ही नाम है। 10 मुख्तलिफ चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो जन्नत दिखाई, फिर उसमें रख भी दिया। हमारी ज़ुबान में ये कह लीजिए कि ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपको ये कह दिया जाए कि ट्रायल दे दिया, जैसे आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया कि असल जन्नत में ये कुछ होगा। अल्लाह ताला ने पूरी जन्नत आदम अलैहिस्सलाम के लिए खोल दी। जब खोल दी जन्नत, तो आदम अलैहिस्सलाम की एक आजमाइश थी। हर इंसान का एक इम्तिहान होता है ना, तो आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश क्या की कि आप पूरी जन्नत में जहाँ चाहें जो मर्जी खा लें, लेकिन एक दरख्त का फल नहीं चखना। वो कोई भी था, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे लिए नहीं है ये। सिर्फ अल्लाह ताला ये देखना चाहते थे कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस हुक्म को कैसे पूरा करते हैं। आदम भी नबी बने, पहले इंसान थे, उनको ज़रूरत भी नहीं थी। इतना कुछ जुआ है तो ज़रूरी है कि एक ऐसी चीज़ खा ली जाए जिससे कोई रोक ले। लेकिन इब्लीस, जिसको हम शैतान कह लें, जिसको आज के दौर में डेवल कह लें, इसके नाम के साथ कोई भी नाम रख लें, इसको बड़ा हसद था कि अल्लाह ने इंसान को जन्नत में पहुंचा दिया है और मुझे जन्नत से निकाल दिया है, क्योंकि इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था। तकब्बुर किया उसने, कहने लगा मैं आग से बना और आग ये मट्टी से बहुत बेहतर है। लिहाजा उसने ये कि ये बड़ी मारूफ कहानी है, हम कुरान जब खोलते हैं तो तीसरे चौथे रुकू में इसकी कहानी शुरू होती है और चलती रहती है पूरे कुरान पाक में। हम इस वक्त इससे आगे जाएंगे, सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि इंसानियत का आगाज़ कहाँ से हुआ। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मना किया, तो शैतान ने इसी चीज़ पे वार किया, धोखे के साथ, बहाने के साथ, बड़ा आदम अलैहिस्सलाम का मुखलिस और खैरख्वाह बन के आदम के पास, और उनकी बीवी का नाम हव्वा, ईव कहते हैं उसको इंग्लिश में, और उर्दू में उसको हव्वा कहते हैं अरबी में भी, तो उनके पास आया और कहने लगा कि तुम इस दरख्त का फल ज़रूर खाओ। कभी हमें नहीं ज़रूरत खाने की। कहने लगा कि तुम जब इसका फल खाओगे ना, तो तुम हमेशा की ज़िंदगी पाओगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। और इसने नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ करना चाहा, ये कहकर कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए इससे रोका है कि अगर तुम हमेशा के लिए ज़िंदा रहोगे तो तुम अल्लाह के मुकाबले पे आ जाओगे। यानी झूठी सच्ची बातें करके, सूरत अल आराफ के बिल्कुल पहले दूसरे रुकू में आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, अगर कुरान पाक में से देखें कि का समहुमा कस्में खाई, मैं तुम्हारा बहुत मुखलिस हूँ, मैं तुम्हारा अपना हूँ, ये है वो है। आदम और हव्वा ने उस फल को चख लिया, सिर्फ चखा, खाया भी नहीं। जूं ही उन्होंने चखा, अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको इसकी सजा में जन्नत का वो जो खूबसूरत लिबास दिया था वो उतार लिया। अल्लाह ताला को गुस्सा आया। जो ही आदम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि मैंने तो गलत काम कर दिया, अल्लाह ताला ने जो कहा था वो किया नहीं, तो फौरन वो अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये भी सूरह अल अराफ़ में ही आती है बात। जब ये सब कुछ हो गया, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया। तौबा के अल्फाज यही थे जो हमने भी जिक्र किया। किस्सा मुख्तसर, जिस बात को मैं बहुत ही छोटा करना चाह रही हूँ, और वो क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम को एहसास जो भी हो गया, तो उन्होंने अल्लाह से तौबा की। अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अब तुम ज़मीन पर चले जाओ, तुम अब जन्नत में नहीं रह सकते, क्योंकि जन्नत वो जगह है जहाँ लोग अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ तो रह सकते हैं, उसकी बात मानेंगे, नाफरमानी से नहीं होंगे। खैर, अब क्या हुआ, आदम और हव्वा जितनी देर अल्लाह ताला ने चाहा वो तौबा की दुआ मांगते रहे। खैर, आखिर में अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया, तो फिर उनके दिल में एक सवाल था, और वो क्या कि जब हमें माफ़ कर दिया है तो अब हमें जन्नत दोबारा मिलनी चाहिए, जन्नत दोबारा चाहिए। जब उन्होंने ये मुतालबा किया, तो अल्लाह ताला ने कहा अब नहीं, कुल नहबितु मिन्हा जमीया, तुम सब निकल जाओ इसमें से, फइम्मयातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, और फमन तबिया हुदाया या फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसके पास मेरी तरफ से हिदायत आए और वो उस हिदायत की बात को मानेगा, तो फिर उसको दोबारा जन्नत मिलेगी। खुलासा कर देती हूँ जितनी बात हुई है। आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, उनको एहसास हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। जो ही अल्लाह ताला ने माफ़ किया, तो अब आदम अलैहिस्सलाम क्या चाहते थे कि मुझे जन्नत मिल जाए। तो अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि अब जन्नत में जाने का तरीका क्या है, कि मैं नबी भेजूंगा, नंबर एक, किताबें भेजूंगा, जिनके अंदर अल्लाह ताला की मर्जी की बातें होंगी, जो अल्लाह ताला कहेगा करना है वो करेंगे, जो मानना है वो मानेंगे, और जो बंदा उस पर अमल करेगा उसको जन्नत मिल जाएगी। ये है आज के हमारे टॉपिक की बुनियाद, कि हमारा सवाल क्या था कि इंसान कौन है। तो नंबर एक, कि इंसान आदम की औलाद है। यहाँ एक साइड इशू सिर्फ बता दूँ, बहस नहीं है इस वक्त, सिर्फ हल्का सा, कि आज डार्विनिज्म का नाम लेकर एक मिथ है कि इंसान बंदरों की औलाद है। एवोल्यूशन का नज़रिया आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में, कि इंसान इवॉल्व हुआ है, पहले बंदर था, होते 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 इंसान हुआ। तो ये नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इंसान बंदरों से नहीं बना, बल्कि इंसान इंसानों की औलाद है। ये जो आज बंदर हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म से बंदर ही हैं। और एक वक्त ऐसा गुजरा बनी इसराइल की हिस्ट्री में, कि जिस दौर में इंसानों को बंदर बनाया गया था सजा के तौर पर, हजरत दाऊद के दौर में, जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को बहाने से बदलना चाहा, लेकिन वो बंदर ख़त्म हो गए थे, आज वो बंदर नहीं है। अब बात शुरू होती है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के लिए पैदा किया, और इस ज़मीन पे रहते हुए इंसान को अल्लाह की मर्जी माननी है। इतनी बात तो वाजे हो गई। अब क्या होता है, इंसान दुनिया पे आ गया, आदम और हव्वा उनकी बीवी थी, लोग तो थे नहीं बहुत सारे। अब आदम और हव्वा को फितरत पे अल्लाह ने पैदा किया। अब सवाल पैदा होता था कि लोगों को कौन बताए कि अल्लाह कौन है, गॉड कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर है कौन है। जाहिर है कि उस वक्त कोई था ही नहीं, तो अल्लाह नहीं बताना था ना। तो उसका तरीका भी एक ऐसा ही चाहिए था कि आदम को जो बताया, फिर आगे उनके बच्चों को भी पता हो। देखे ना, अगर बोल के आदम को बता दिया जाता कि मैं अल्लाह हूँ, मैं एक हूँ, मैं आसमान पे हूँ, तो जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जाते तो फिर क्या होता, फिर कोई भी ना उनके पास इस वक्त होता। अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी हिकमत से इसके लिए क्या तरीका किया कि आदम अलैहिस्सलाम की जो पुश्त है ना, बैक, इस पे हाथ फेरा। जब हाथ फेरा ना, तो क्यामत तक जितने बच्चे भी पैदा होने थे, वो किसी मजहब के घर में हो, नो प्रॉब्लम, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब हम आदम से हैं, हम सब एक हैं। जितने बच्चे आदम की नस्ल से क्यामत तक आने थे ना, उनकी रूहें जमीन पे फैल गई। आप इसको ऐसे ही सोचिए जैसे रेत के जर्रे, हदीस में आते हैं कि रेत के जर्रों की तरह फैल गई। अब आप सोचे कि अगर इधर पीछे हॉल में एक बहुत बड़ा ढेर लगाओ, तो कई ट्रिलियन मिलियन अनगिनत तो जर्रे उसमें ही होंगे। हमारा ईमान है, क्योंकि किताब में ये बात आ गई, हम इसको मानते हैं। जब वो सब की रूहें दुनिया में आ गईं, तो अल्लाह ताला ने फिर उन सब की रूहों से ये बात कहलवाई थी कि ये बताओ कि तुम दुनिया में जब जाओगे, पैदा होगे अपने वक्त पे, तो तुम किसको खुदा मानोगे, किसकी बात मानोगे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, हम तुझे एक मानेंगे। अब आप आज की जुबान में इसको यूं समझें कि अल्लाह ताला ने हम सब के दिमागों में प्रोग्रामिंग कर दी। जैसे आज कंप्यूटर होते हैं ना, नया कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो खाली होता है, कुछ नहीं। एक्सेल खोले नहीं खोलेगा, वर्ड खोले नहीं खोलेगा, पावर पॉइंट नहीं खोलेगा। पहले आप उसमें चीज़ें डालते हैं, फीड करते हैं, फिर वो अंदर महफूज होती हैं, फिर जब खोलना चाहे वो खुल जाती हैं। जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको मेरी ये बात समझ आ जाएगी। हमारे दिमागों के कंप्यूटर में अल्लाह ताला ने एक बार डाल दी, और वो क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। बहुत समझने की बात है। कोई ये कहता है ना कि हम अल्लाह को मानते हैं, तो ये कहना काफ़ी नहीं है। जब तक कोई ये ना कहे कि सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ बात समझाने के लिए, कि जैसे एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि तुम मेरे शौहर हो, तुम मेरे घर वाले हो, तो बात तो समझ आ जाती है ना। लेकिन अगर वो कहती है सिर्फ तुम ही मेरे शौहर हो, तो फ़र्क क्या है? पहली बात में क्या समझ आती कि तुम तो मेरे घर वाले हो, लेकिन हो सकता कोई और भी हो, है ना। और दूसरी बात में क्या समझ आती है कि सिर्फ तुम ही हो। शौहर क्या चाहते हैं बीवियों से, दूसरी बात चाहते हैं ना। अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कह दे कि मैं तुम्हारा भी शौहर हूं, तो बीवी कहेगी और किसके हो। तो मर्द क्या कहता है कि मैं तुम्हारा ही शौहर हूं। ठीक है, ये है लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिर्फ समझ जाएंगे ना हम सब, सारी बातें सारे झगड़े खत्म। अल्लाह एक है, नंबर एक है ही एक। दूसरी बात, वो किधर है, क्या उसका कोई वजूद है? बिल्कुल है। सूरत नूर में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आयत 25 या 30 है कि अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। सूरत नूर में आता है कि अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, और उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। अभी हम छोटी छोटी बातें समझते हैं कि अल्लाह है, वजूद है। जैसे मिसाल है कि ये चीज़ मुझे दिख रही है ना, ये मग है, मुझे दिख रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे हवा है, तो साइंस नहीं, जिन्होंने पढ़ी वो कहेंगे नहीं है, जिन्होंने पढ़ी वो कहेंगे हाँ इर्द गिर्द हमारे हवा है, ठीक है ना। तो हवा है लेकिन हमें दिख नहीं रही, ये मग है लेकिन दिख रहा है। तो इसका मतलब कि जो चीज़ें मौजूद होती हैं ना, उनके मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला की ज़ात का वजूद है, पक्की बात है, वो एक है। ये जो हम कहते हैं ना कि मेरे भी अंदर खुदा, तेरे भी अंदर खुदा, उसके भी अंदर खुदा, ये थोड़ी सी हमारी लाइलमी है। बात लोग कहते हैं ना कि जी भगवान अंदर रहता है या अल्लाह अंदर रहता है। आप पढ़ें मुसलमानों की किताबें, पढ़ें कवालियाँ सुने, वो कहते हैं अंदर तू बाहर तू, ये वो। मिसाल है, बिलफर्ज अगर हम इस बात को ले लेते हैं, बहुत ही बेअदबी की बात है, लेकिन सिर्फ बात समझाने के लिए, क्योंकि पहले जो बातें हो रही थी उसमें भी ये बात हो रही थी ना, तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं कि जो लोग ये गलत फहमी रखते हैं ना कि अल्लाह अंदर है, तो पहली बात है कि अल्लाह के हर बंदे के अंदर है, भगवान अंदर रहता है। तो बताएं कि जब एक बंदा गुनाह करता है तो क्या उसके साथ वो भगवान भी गुनाह करता है? जब एक बंदा वॉशरूम में जाता है, टॉयलेट में जाता है, तो क्या नौज़ बिल्ला अल्लाह भी उसके साथ होता है? इंसान के अपने शौहर बीवी की गुर्बत, कितने ऐसे वक्त होते हैं कि जिसमें उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर तो चोर चोरी करते वक्त कहे कि मेरे अंदर के भगवान ने भी चोरी की है, राइट? तो ये गलत बात है। असल क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत अंदर है, अल्लाह का डर अंदर है, अल्लाह का खौफ अंदर है, अल्लाह का इल्म अंदर है। अल्लाह ताला खुद अपने बारे में क्या बताता है कि अल्लाह कौन है? कि अर रहमान, वो रहमान है। अलल अर्श इस्तवा, कुरान में आप देखें तकरीबन 7 दफ़ा ये बात मिलती है कि अल्लाह ताला अर्श पे है। हमारा सही अकीदा क्या है अल्लाह ताला के बारे में? कि अल्लाह ताला अपने वजूद के साथ, जैसे इस वक्त मेरा और आपका ये वजूद है, अपने वजूद के साथ सातवें आसमान पे है। ये जो आसमान हमें दिख रहा है ना, इसके ऊपर 6 और है। आज साइंस ने प्रूफ कर दिया, 7 हेवंस। इस्लाम क्या कहता है कि ये गैसों से बने हुए हैं, जैसे एक लेयर है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, और हर एक आसमान से लेके दूसरे आसमान के बीच में 500 साल का फासला है। अब वो कितना है अल्लाह को पता है। ये दरवाजे हैं, ये खुलते हैं, ये एक अलग इशू होगा। अल्लाह ताला ऊपर है, लेकिन आप बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये अकीदे की बात है ना। अल्लाह ताला अपने वजूद से ऊपर है, लेकिन वो कितना जानता है? वो सातवें आसमान पे होने के बावजूद मेरे आपके दिल की बातें भी जानता है। एक माँ पेट में रखने के बावजूद बच्चे को, इतने महीने जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो माँ को नहीं पता होता कि ये क्यों रो रहा है। पेट में दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है। शौहर बीवी एक जगह एक कमरे में सो रहे होते हैं, उनको नहीं पता था कि शौहर इस वक्त क्या सोच रहा है। अल्लाह का इल्म कितना है कि सातवें आसमान पे होते हुए भी उसको पता है कि हम क्या जानते हैं। पहली बात, मैं और आप भी कुछ जानते हैं। हम कितना जानते हैं जो हमें पता चल जाए? इस कमरे में क्या हो रहा है हमें पता चल रहा है। अब आप समझिए कि हमारे जानने की एक हद है ना। आप बताइए कि मैं और आप खुद एक दूसरे से पूछते हैं, हम इस घर के इस हॉल में बैठे हुए ना, अपने ही ले लेती हूँ, क्या मुझे पता है कि इस घर में बाकी कमरों में भी कौन है, कितने लोग हैं, कमरे खाली हैं, इस घर में कितने कमरे हैं? नहीं पता ना। हाँ, यहाँ से उठने के बाद जब आप कहते हैं आए देखें, जहाँ मैं जाऊँगी मैं देख लूँगी, तो हमारे इल्म की हद कितनी है? इतनी है। अल्लाह के इल्म कितनी है? इतनी बड़ी कुदरत है वो कि वो सातवें आसमान से भी इस वक्त भी उसको पता है मैं क्या बोल रही हूँ और कौन क्या सोच रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ले लेते हैं अल्लाह ताला की मिसाल के लिए, हैं बहुत सारी लेकिन दो तीन लेंगे। दूसरी क्या? सुनना। मैं सुनती हूँ ना, आप भी सुनते हैं, हम कितनी बात सुनते हैं जो हमारे कानों की रेंज तक हो। ये माइक बंद कर दो, अब आप देखिए कि क्या आपको मेरी आवाज़ वैसे आ रही थी जैसे पहले आ रही है? नहीं आ रही ना, अब फिर आने लग गई। ये माइक जहाँ तक इसकी आवाज़ जा रही है, ये वहाँ तक आ रहा है, ठीक। हम कितना सुनते हैं जो हमारे कानों की रेंज तक है। अच्छा, हम सब इधर है, माइक भी लगा हुआ है, और अभी हम सो जाएं, इधर ही बैठ के आंख लग जाए कि भाई अब थक गए, काम करके आए हैं, चलो सो जाएं। आप बताएं, जो ही हम सोते हैं तो क्या हम सुनते हैं? हमारा सोते ही हमारा सुनना बंद हो जाता है ना। तो गोया कि हमारे सुनने की हद बहुत छोटी है। अल्लाह सुबहाना ताला की सुनने की हद कितनी है कि वो ऊपर, और वहां से इस दुनिया क्या काली रात में अंधेरी गार के अंदर कोई चींटी भी अल्लाह को पुकारती है तो अल्लाह को उसकी भी आवाज आती है। सूरत मुजादला 28वें पारे की पहली सूरत है कुरान में, कि एक औरत नबी सल्लम के पास आई। उस दौर के रिवाज के मुताबिक उसकी शौहर ने कह दिया कि तू मेरी माँ है, ऐसे जैसे बास मर्द गालियां दे देते हैं ना, तो उस मर्द ने उस दौर के रिवाज में कह दिया कि तेरी तो पुश्ती मेरी माँ की तरह मिलती है, अंति अलैया कज़हरी उम्मी। अब उस दौर के रिवाज के मुताबिक उसको तलाक हो गई थी। वो औरत रोने धोने लग गई कि बूढ़ा शौहर है, बच्चे हैं, मेरा घर टूट गया। वो नबी सल्लम के पास आई कि अल्लाह के नबी मेरा घर बचाए, मेरा तो घर टूट रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी नहीं बोलते थे क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था। आपने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हुक्म यही है। खैर आप खामोश है, उसने ज़रा गुस्सा भी किया कि मेरा घर टूट रहा है, आप कुछ करें। लेकिन नबी भी जो होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ अल्लाह की बात पहुँचाते हैं। खैर अल्लाह के नबी साइड पे गए तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं देख रही थी कि वो औरत बड़ी दुखी और मतलब नबी सल्लम से चाह रही है कि मेरे लिए कोई मसला हल हो। लेकिन आखिर में जब वो गए तो उसने खुद ही मसला डाल के तो अल्लाह से बातें शुरू कर दी, नमाज शुरू की और रोने लग गई। वो अल्लाह से अपना शिकवा कर रही है और नबी सल्लम के दिल पे अंदर वही नाजिल हो गई कि कद समय अल्लाह कौल अल्लती तुजा दिलु का फी जौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शोहर के बारे में आपसे झगड़ा कर रही थी। हजरत आयशा जो पास ही थोड़ी दूर बैठी थी कहती कि मैं इस जगह बैठी हुई, कहती मैं यहां बैठी हुई नहीं सुन पा रही कि वो क्या खुसर बुसर कर रही है, लेकिन साथ में आसमान पे अल्लाह तला ने सुन ली। तो ये है समी, बात बात है। ये जो मैं भी सुन रही हूँ और आप भी मेरी बात सुन रहे हैं ना, ये अल्लाह ने अपने असमी की कुछ खूबी मेरे में डाल दी। मैं जानती हूँ तो अल्लाह ने अपने अल अलीम होने की डाल दी। इसी से एक और मिसाल लेके आगे चलते हैं। अल बसीर, अल्लाह ताला देखता है, सब कुछ देखता है। कैसे देखता है? पहले हम अपने आप को देखें। मैं आपको देख रही हूँ ना, लेकिन मेरे पीछे क्या है मुझे नहीं पता। और आपके पीछे कोई उधर दरवाजे में आ जाए तो आप नहीं देख सकते ना। हमारे देखने की हद है, खुली जगह पे चले जाएं, हदे निगाह तक बस देखेंगे, फिर चीज़ें दूर दूर दिखेंगी। ऊपर देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी, जहाँ से नीचे देखें तो आपको छोटे छोटे घर दिखेंगे ना। अब हमारे देखने की एक हद है, अल्लाह सुबहाना तला का देखना कैसा है? सातवें आसमान पे होने के बावजूद अल्लाह तला दिलों के अंदर भी देख लेता है। हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां हैं क्या हैं, एक्सरे मशीनें दिखा देंगी, सीटी स्कैन कर लेंगे तो दिखा देंगे वो आपको। अल्लाह को पहले ही पता है हमारे दिल के अंदर क्या बीमारी हो चुकी है शुरू, हमारे जिस्म में क्या, हमारे मैदे में क्या क्या। तो अल्लाह का जानना, देखना, बोलना, इसी तरह 99 नेम्स एंड एट्रीब्यूट जो हम अल्लाह तला के पढ़ते हैं अक्सर दरसों से पहले भी सुनवाते हैं, ये अल्लाह तला की सिफतें हैं। ठीक है, तो अभी तक जो बात है उसका खुलासा क्या है कि अल्लाह एक है आसमान पे, उसकी खूबियाँ इतनी ज्यादा हैं कि उसकी हर खूबी मुकम्मल है। फिर वो मदद करता है, आपकी माँ है पाकिस्तान में रहती है, वो चाहती है आपकी बड़ी मदद करे लेकिन वो नहीं कर पाती। एक खास हद तक वो कहती है बेटा गम ना करना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, लेकिन वो माँ आपकी मदद नहीं कर पा सकती। लेकिन अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद कुन कहता है तो हो जाती है। तो अल्लाह की जात के मामले में हमारा अकीदा दुरुस्त हो गया। अब आप सोचिए कि अल्लाह क्या सिर्फ ऊपर ही होता है? नहीं, हदीस में आता है कि जब आधी रात का वक्त गुजरता है, तीसरा हिस्सा जब फजर से पहले का वक्त है, तो अल्लाह ताला सातवें आसमान से पहले आसमान पे आ जाते हैं। अब आप सब फोकस रहें, ताल्लुक को देखें कि अल्लाह के साथ कैसा आपका जुड़ता है, कि अल्लाह ताला ये जो आसमान मेरे और आपके ऊपर है ना, इधर आ जाते हैं, यानी हमारी कुर्बत फील होती है कि वहां थे। अल्लाह के लिए तो हम सब करीब हैं, लेकिन आज रात अगर आप महसूस करके देखें कि जब आप कभी सहरी के वक्त अल्लाह ताला आपको जाग के थोड़ी नफिल इबादत का मौका दे दे, तो आपको लगेगा कि अल्लाह ताला आपके घर की छत के पास है, करीब आते हैं। फिर हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हान तआला पुकारी लगाते हैं, है कोई गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला, मैं उसकी गुनाहों को माफ़ कर दूँ। है कोई बीमारियों से शिफा लेने वाला, मैं उसको शिफा दे दूँ। कोई है रिस्क के मामले में परेशान, रोजी रोटी का तंग, मैं उसकी मदद करूं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पिछले पैर में जागा करते थे। आज आप और मैं देखते हैं कि हम इंसान दुनिया में किस तरह दौड़ धूप करते हैं ना, कितनी सुबह उठ के गाड़ियां निकलती हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, ट्रेनें जो भरी रहती हैं सुबह कहाँ हैं? बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में क्यों जाते हैं भला? ताकि दुनिया में कामयाब हो। क्या हमारे बच्चों को शौक है मोटी किताबें पढ़ने का? कोई शौक नहीं, सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि डॉक्टर बन जाए और रोजगार लग जाए। लड़कियां भी हैं तो लड़के भी, उनका स्टैंडर्ड होना, जिस चीज को पाने के लिए हम सारा दिन दौड़ धूप करते हैं, अल्लाह रातों को आके हमें पुकारने लगाता है कि तुम मेरी बात मानो, मेरे से ताल्लुक जोड़ो, मैं तुम्हारी बात को सुनने वाला हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। एक वाकया मेरे दिल में आया जिसको जरूर सुनाऊँ आपको, बुखारी की रिवायत है। ये जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह का लफ्ज़ सिर्फ यानी किसी एक खास नाम के साथ जुड़ जाता है, हालांकि अल्लाह ताला हर इंसान का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो एक औरत थी, वो मुसलमान नहीं थी, काफर थी, हिंदू थी कह लें आप आज की जुबान में, एक कबीले में रहती थी, अपनी जुबान में यानी ईमानदार थी, यानी झूठ नहीं बोलती थी, चोरी नहीं करती थी। तो उस कबीले का जो सरदार था ना, उसकी बेटी का हार गुम गया। तो जैसे अमूमन होता है कि जब भी कोई चीज़ चोरी होती है तो घर के नौकरों पे इल्ज़ाम लग जाता है, उनके दिल में आया कि शायद इस औरत ने चोरी कर ली है, तो उन्होंने इस औरत की तलाशी ली, हत्ता कि उन्होंने इसकी तलाशी लेने में इसके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को भी देख लिया कि कहीं इसने हार चोरी करके छुपाया तो नहीं। इस औरत ने नहीं था किया हुआ चोरी, ये सच्ची थी। जब उन लोगों ने इस पर शक किया ना, तो इस औरत का दिल उनसे खट्टा हो गया, जैसे कहते हैं ना दिल टूट गया। इसने अपनी जुबान में रब को पुकारा कि रब अगर तू है ना तो आज मेरी बेगुनाही साबित कर दे इनके आगे, तो मैं इनको छोड़ दूंगी, मेरा दिल इनसे कट्टा हो गया। अल्लाह का करना देखिए कि सारे कबीले के लोग खुली जगह पे बैठे हुए थे ना, तो आसमान से एक चील आई, उकाब कह लें या जैसे चील होती है, तो उसने सबके सामने वो हार जो था जमीन पे फेंका। लोगों को पता चल गया कि हार औरत ने नहीं चोरी किया, तब उसने नहाने के लिए कहीं दरिया के किनारे रखा होगा, चील उठा के ले गई। अब वो कहीं भी फेंक देती, लेकिन अल्लाह ने उस औरत की दुआ सुनी, क्योंकि वो अल अलीम है, अल्लाह हिल्म जानता है। हम जब दुखी होते हैं तो हम उसको पुकारते हैं ना, तो उसको पता चलता है। तो जब उस औरत ने पुकारा, हार मिल गया, उसके बाद लोग बड़े शर्मिंदा हुए कि हमने तो इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, बहुत माफ़ियाँ मांगने लगे। तो उसने कहा नहीं, मुझसे माफ़ियाँ नहीं मांगो, मेरे पर एक एहसान करना है तो कर दो कि मुझे आज़ाद कर दो, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो शर्मिंदा तो थे ही, उन्होंने कहा नहीं जाओ तुम आज़ाद हो। उसको सामान दिया, वो अपने सर पे सामान की पोटली गठली बांध के चल पड़ी, उसको नहीं पता मैंने किधर जाना है, लेकिन उसने वहाँ नहीं रहना था। चलते चलते वो मदीना के करीब किसी गाँव में थी, तो वो मदीना में पहुँच गई। जब वहाँ घूमती फिरती पहुँची तो देखा तो मस्जिद नबवी है, जहाँ भी आज मुसलमान जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उसके कान में पड़ी। कि दुखी थी ना, उसका दिल दुनिया से टूटा हुआ था। तो ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत जल्दी मिलता है। उसने फौरन जाके अल्लाह के नबी की जुबान से बात सुनी, इस्लाम, कहने की सच्ची यही है, मुसलमान हो गई। जब वो मुसलमान हुई तो अब अगला था कि उसको भेजेगा, कोई था ही नहीं, तो अल्लाह के नबी ने मस्जिद के साथ ही उसका एक चबूतरा बना दिया, वो मस्जिद में रहने लग गई, उसके साथ मस्जिद की सफाई करती, देखभाल करती, फारिग वक्त होता तो नबी सल्लम की बीवियों के पास जाके बैठ जाती, देखिए अल्लाह ने उसका मुकद्दर कैसे खोला। तो वहाँ जब बैठती थी तो हज़रत आयशा, ये पूरी बुखारी का रिवायत है, ये खुलासा मैंने अपने लफ्ज़ों में सुनाया आपको, जब वो बैठती थी ना तो आह भरती थी, तो एक शेर पढ़ती थी अरबी में, जिसका मतलब क्या था कि वो हार की चोरी वाला दिन मेरे अल्लाह की कुदरतों की एक कुदरत थी, कि जब मुझे कुफर के अंधेरों से इस्लाम की रोशनी में ले आया। तो बात क्या है, अल अलीम, वो जानता है। अब यहाँ तक बात हम रोकते हैं अल्लाह के बारे में कि अल्लाह और क्या है क्या नहीं, लेकिन इतनी बात भी काफ़ी है कि अल्लाह आसमान पे हमारे दिल के भेद जानता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए क्या जरिया पैदा किया। हज़रत आदम जब दुनिया में आ रहे थे तो क्या कहा गया कि फ़ाइम्मा याती अन्नकुम मिन्नी हुदन, हिदायत आएगी। अल्लाह ताला ने जब इंसान दुनिया में बढ़ते गए ना, तो उनकी हिदायत के लिए नबियों को भेजा, एक वक्त में एक नबी। हज़रत आदम जब आए ना तो वो इंसान भी थे पहले, नबी भी थे, लेकिन उस वक्त तक लोग गुनाह नहीं करते थे। आप में से कोई मुझे बताएगा क्यों? अभी मैंने शुरू में इसका जिक्र किया है। शुरू शुरू जब दुनिया बनी, बहुत थोड़े से लोग थे, तो लोगों को गुनाह करना ही नहीं आता था। वजह क्या है? हम सब ने वादा किया हुआ था, अल्लाह ने वापस हम सबको हमारे बापों की पुश्तों में डाल दिया, तो लोगों को ये याद था कि जब हम दुनिया में आएंगे ना तो अल्लाह को एक मानेंगे और उसकी बात मानेंगे। शुरू में ये रहा तो किसी किताब की जरूरत ही ना पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा स्किप करके आगे चलते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दौर चलता गया, उनके बच्चे पैदा होते रहे, दुनिया फैलती रही। दुनिया में कुछ नेक लोग थे, हर तरह के लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही नेक थे। एक का नाम लात था, एक अमरनाथ जिसका पंचतन पाक कहते हैं ना आज के दौर में। इस तरह उस दौर में पांच बुजुर्ग थे जो अपने वक्त के बड़े नेक लोग थे। अब हुआ क्या कि एक एक करके वक्त के साथ उन नेक लोगों की मौत का वक्त आता गया। जब वो लोग फौत हुए तो शैतान जो पहले ही इस ताड़ में होता है कि जिस तरह आदम को जन्नत से निकलवाया था इनके बच्चों को भी निकलवाना है, तो वो लोगों के पास आता, कहता देखो वो लात फौत हो गए हैं, कितना पहुंचा हुआ बुजुर्ग था, कितना नेक था, देखो तुम इतने बुरे काम भी करते हो, कुछ भी करोगे, लेकिन उसकी वजह से तुम बचे हुए थे। बात सुन रहे? यानी नेक बंदा था तुम्हारे बीच में, उसके तुफैल तुम अल्लाह के अजाब से बचे हुए थे। ये नहीं कहा कि तुम भी नेकियां करो, तुम गलत काम ना करो, शैतान जी कभी नहीं कहता। ये कहते फलां नेक उसका पल्लू पकड़ लो, वो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। अच्छा अब क्या करें? कहा ऐसा करो कि तुम इसकी शक्ल बना के ना घर में रख लो, कागज चाक और कोयला वगैरह होता है ना, तो जैसे वो बच्चे नहीं लकीरें लगाते, शबीहें सी बना के घरों में रख लो। कुछ अरसा गुजरा तो वो कोयले चाक की लाइनें जो उनकी शबीहें बनी थी वो मिटने लगी। फिर शैतान अगली नस्ल के पास आया, कहने लगा देखो ये तो थोड़े सालों में खत्म हो जाएंगी, फिर तुम पे पकड़ होगी, बरकत नहीं होगी, तुम ऐसा करो कि इनके बुत बना लो, स्टैचू बना लो। वो दिन और आज का दिन लोगों ने नेक लोगों के बुत बनाने शुरू कर दिए। जब बुत बनाए तो कुछ अरसा वही बुत रहे, फिर अगली नस्ल आई तो शैतान उनके पास आया, कहने लगा देखो ये घर में भी तो पड़े ही हुए हैं ना, बस जिस कमरे में बैठ के तुम इबादत पूजा पाठ करते हो ना वहां इसको रख लो, फिर इसकी और बरकत आएगी। अगले लोगों ने ये शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा आया कि अगली नस्लों को शैतान ने इस पर लगा दिया कि बस इनको अपने सामने रख लो, कहो ये कि मांगते ऊपर आले से हैं, ये बीच में वसीला है। बात समझ है? वो दिन और आज का दिन देख लें कि लोग कितने अकलमंद होने के बावजूद, दुनियावी तौर पे आप देखिए कितने समझदार होते हैं लोग, दुनिया की तरक्की, कारोबार देखिए, दुनिया की मेहनत देखिए, लेकिन एक पत्थर के बुत के सामने बैठ के पूछते हैं। अब मेरे सामने कप रखा हुआ, इसके अंदर चाय थी, चाय पीनी थी ना, तो मैं इसको सोचूं हाय इसने मुझे चाय दी ताकि मैं फ्रेश हो गई, तो मैं इसको पूजना शुरू कर दूं। आपके सामने भी माइक रखा हुआ है, मैं को देखो ये कितना अच्छा है, इसकी वजह से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो मैं इसी से मांगने लग जाऊं। बेवकूफी है ना? लेकिन शैतान बंदों के दिमाग में उस वजह से उसने बुत परस्ती शुरू करा दी। अब हुआ क्या कि जब दुनिया में शिर्क आया तो फिर नबियों की जरूरत पड़ी, फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। इस तरह चलते जाएंगे आगे। अब नबुवत का दूसरा इशू आ रहा है हमारा कि नबी दुनिया में कब आने शुरू हुए, जब लोगों में शिर्क आया और साथ ही साथ दूसरे गुनाह शुरू हो गए। हजरत नूह आए 950 साल, यानी तकरीबन 10 सदियां उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन लोग कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे। बिलाखिर पूरी दुनिया में एक तूफान आया और वो सारा किस्सा खत्म हुआ। अब हजरत आदम तो पहले नबी थे और इंसान थे, उनको बहुत ज्यादा साहिब शरीयत नबी हम नहीं कहते क्योंकि उनके दौर में कोई ज्यादा शरीयत नहीं बनी। हजरत नूह पहले नबी थे, उसके बाद हजरत नूह के बाद वक्त गुजरा, सिर्फ मशहूर अंबिया इकराम में से अगर आप देखें तो हजरत नूह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, जिनकी आयतें मैंने आपको शुरू में सुनाई, इस्माइल, फिर मूसा, फिर ईसा और आखिरी नबी उसमें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही सिलसिला है, अल्लाह ने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आबादी थी वहाँ नबियों को भेजा, हर जगह। ये आज अगर हम लंदन में बैठे हैं ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी दौर में अगर यहाँ लोग थे ना तो यहाँ भी कोई नबी आया था। इसी तरह आप देखें पाकिस्तान, इंडिया, हमारी बहुत अच्छी साथी थी तो मुझे ले गई अपने एक दोस्त के घर, तो वो सिख थी, सरदार जी थी, तो वो मुझे ले गई, तो मैंने उनमें इतना अपने दीन की मोहब्बत देखी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी किताब दिखाएं। क्या फिर वो किताब ले आई तो वो पंजाबी में थी और मैं समझी कि पंजाबी मुझे पढ़नी आती है, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ सकी, वो दूसरी तरह की थी। फिर मैंने उनसे उनसे जो बातें सुनी ना, तो उसका खुलासा मुझे क्या निकला, इतनी चीजें मिलती हैं, अल्लाह एक है, मतलब वो बुत की पूजा भी नहीं करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसमें जो मुझे चीज समझ आई, वल्लाह आलम ज्यादा तो मैं नहीं उसको समझ सकी, लेकिन जितनी बात समझ आई कि हुआ क्या कि जो गुरु नानक थे, जो उनके बड़े थे, वो भी किसी दौर में किसी नबी के फॉलोअर थे, वो भी वही लोगों को कहते, लोगों अच्छे काम किया करो, बुरे ना करो, झूठ ना बोलो और ये करो। हुआ क्या कि लोगों ने उनकी बात मान के अच्छे काम करने के लिए उनको ही बड़ा बना लिया। बात समझ रहे? जिस तरह हजरत ईसा को ईसाइयों ने बना लिया। इस्लाम का दूसरे तमाम मजहबों से फर्क क्या है? अब इस फर्क को समझ के मैं इस रिसालत की बात को ख़त्म करती हूँ, ताकि फिर इस मौजू को अगले किसी मौजू में भी हम ले लेंगे अगली नशिस्त में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम मुसलमान अपना आखिरी नबी कहते हैं, हम अपने आप को उनसे नहीं जोड़ते, हज़रत ईसा के बारे में ईसाइयों ने आज क्या बना लिया कि ईसा अल्लाह का बेटा है, कफ़ारा, पार्डन, कि वो उनके बदले में आसमान पे ले जाएंगे। सब सुन लिए ना आप लोगों ने, कुरान में पढ़ते रहते हैं आप लोग। मुसलमान जो है ना, वो अपने आप को मुहम्मदी नहीं कहते, ना हम ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सजदा करेंगे, ना हम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गुरु हैं या हमें वो बचाएंगे। हम कहते हैं कि वो हमारे उस्ताद थे, नबी थे, हमें अल्लाह की बातें बताते थे और वो खुद भी वो बातें करते थे जिसको हमें कहते थे। ठीक है, आज अगर हम मुसलमान होते हुए अगर अल्लाह के नबी की बातें नहीं मानते तो हमें वो कल क्यामत के दिन नहीं बचाएंगे। हर मजहब में जहां भी शिर्क फैला, जहां भी उनमें खराबी, वो गलूफ थी, नबियों के मुकाम को इतना बढ़ाया कि उनके दामन पे चल पड़े कि भाई इनके रास्ते पे चल पड़ो। ये नहीं कहते जो वो करते थे तुम करो, उनके पीछे लग के लोग खुद जो मर्जी करें। जैसे क्रिश्चियनिटी का एक अकीदा है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना इकलौता बेटा हमारे पास भेजा था, अब हम जो मर्जी गुनाह करें कराएं, नो प्रॉब्लम, हमें ईसा आके बचा लेंगे, पार्डन है। तो ये झूठ है ना। तब ये दो बड़ी चीजें आज हमने समझ ली, अल्लाह कौन है, ऊपर है, आसमान पे है, दिलों के हाल जानता है, हालात जानता है, आसमानी दुनिया पे भी आता है, और मरने के बाद जन्नत में और क्यामत के दिन हम अल्लाह को देखेंगे। वो कैसे देखेंगे वो बहुत अभी आपके लेवल से बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैंने कोशिश की कि आज आपको कच्ची पक्की के बच्चों की तरह सबक दूं ताकि आपको छोटी छोटी बातें समझ आएं। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को जानता है, हम दुख में उसको पुकारते हैं, आज भी हम रात को जाके बैठ के पुकारे। ये जो हमने भी नमाज पढ़ी, इसमें हमने 3 दफ़ा दुआ मांगी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह प्लीज शो मी द राइट पाथ। हर बंदा अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। ये दो बुनियादी चीज़ें अगर समझ आ जाए ना, तो तीसरी जो बुनियादी चीज़ है इस्लाम के अंदर, वो आखरत है, अकीदे आखरत। हम सब ने मरना है, और मरने के बाद अच्छे या बुरे कामों की वजह से या जन्नत है या जहन्नम है। तो जन्नत में जाने की जो बुनियाद है वो अल्लाह को एक मानना है, अल्लाह के बराबर किसी को नहीं करना। अगर हम ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बराबर है, मोहम्मद को सजदा करने लग जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उनके हाथ चूमने लग जाएं, या उनकी तस्वीरें लगाएं, तो हम भी काफिर हैं। हमारा फर्क ही ये दूसरे मजाहब से कि इस्लाम में अल्लाह के मुकाम पे नबी को भी नहीं लाना। बाकी जिधर भी हम देखेंगे ना, आप देखेंगे जो लीडर होते हैं लोग उनको ही सब कुछ बना लेते हैं। तो ये छोटी सी बात थी जो आज की हमारी हुई। हजरत इब्राहिम बिल्कुल मुशरिक माहौल में पैदा हुए थे, लेकिन अल्लाह ने उनको समझ दे दी। तो वो वाकया आप अगर शुरू का अगर अपने जहन में रखें जो हमने सुना, तो किस तरह सूरज को देखा, चांद को देखा, नहीं कि ये रब होगा, लेकिन वो छुप गया, कहा नहीं ये जो छुप जाए वो तो रब नहीं है। सितारे को देखा, वो डूब गया, कहा ये रब नहीं है। सूरज चांद सितारों को देखने के बाद, सबके बाद वो किस नतीजे पे पहुंचे कि मैं इन सबको चलाने वाले को मानता हूँ। अच्छा, अब ये बातें आपने मेरी जुबान से सुनी, आप कह रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी है, ठीक है आप मुसलमान हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी पोएम सुनाओ कि जिसमें एक हिंदू लड़की ने इस्लामी अकायद को कैसे खोला, सुनना चाहते हैं? चलिए आए सुनते हैं, हमें जरूरत नहीं है सुनने की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दूसरे मजहब वाले की भी तो बात सुननी चाहिए ना। तो ये एक लड़की है, उसका नाम गालिबन लता, सुनिए आप, देखते हैं क्या समझ आता है उसको। उधर से मैं इसको मैं इसे बंद करके चलाती हूँ, तो आप देखेंगे कि वो बुनियादी बातें बिल्कुल वही कह रही है जो इस्लाम के अंदर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ नाम रखने से बच जाएंगे या हम किसी का नाम गलत कहने से उसको छोड़ देंगे। ठीक है, सुनते हैं और फिर कोई बात जहन में हो तो उसके ऊपर कर सकते हैं बाद में।
जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, सांसों की आमद का गहरा राज बताता है, जो ये कहता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, इस गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई, जो ये कहता है दुनिया को एक सजा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रजा समझो, जो ये कहता है कि जो कुछ भी है पानी है, कहते हैं हम जिसे कयामत वो तो आनी है, कैसे होती सुबह कैसे शाम काम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, अब जो इस्लाम कहता है, जहाँ बुराई खत्म शुरू इस्लाम वहाँ से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहाँ से है, एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर गाम सिखाया है, कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है, हर अच्छी बातों का हुक्म हमें जो देता है, और आखिरत बन जाए ये दीन ही ऐसा है, जो इंसान को سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. گھنگور ہندی کا لفظ ہے اور بہت زیادہ اس کو بولتے ہیں لیکن مجھے اس سے خوبصورت لفظ یہاں کے لیے ملا نہیں. آج جہاں میں دیکھو تو ہر اور برائی ہے اور بدی سے نیکی کی گھنگھور لڑائی ہے. انسان نے دولت کو اپنا دھرم بنایا ہے اور گناہوں کو ہی اپنا کرم بنایا ہے. کس کو ہے پرواہ فرائض اور اصولوں کی, دنیا یاد رہی بھولے ہر بات وہ نبیوں کی. ذات پات میرا تیرا دنگے مارا ماری, ارے فیصلے کے دن کی بھی کر لو تیاری. ایک راستہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے, جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے. دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے, جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے. اس کی فرما برداری کا نام محبت ہے, یہی عقیدہ کہلائے اور یہی عبادت ہے. بید ہو یا توریت کے ہو, انجیل ہو یا قرآن, لیکن دین فطرت دین قیم ایک ہے. ہاں وہ کہ جو ایمان نہیں لائے پچھتائیں گے, جب دوزخ کی تکلیفوں کو سہنا پائیں گے. جو سچا ایمان یقین اور علم بڑھاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. جو حضرت نوح پر اترا اسلام وہی تو ہے, آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے. ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے, اور قرآن کی سوروں میں اسلام وہی تو ہے. جو سمجھایا نبیوں نے اسلام وہی تو ہے, بھی اسلام حدیثوں نے اسلام وہی تو ہے. جو ایمان مجمل ہے اسلام وہی تو ہے, اور ایمان مفصل ہے اسلام وہی تو ہے. جو کلمہ طیب پہلے پہل پڑھاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. کتاب پڑھی تھی کتنے پاس کتنے دور, اس میں خود ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام دھرم کے بارے میں آپ محمد صاحب حضرت صاحب کے بارے میں لکھا ہے, تو سنیے. جو حضرت منہ پر اترا اسلام وہی تو ہے, آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے. ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے, اور قرآن کی سوروں میں اسلام وہی تو ہے. جو سمجھایا نبیوں نے اسلام وہی تو ہے, بھی اسلام حدیثوں نے اسلام وہی تو ہے. جو ایمان مجمل ہے اسلام وہی تو ہے, اور ایمان مفصل ہے اسلام وہی تو ہے. جو کلمہ طیب پہلے پہل پڑھاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. اب دیکھیے, میں نے رام اور شیو جی ان سب کو پوچھنے والوں کو جواب, میں اتنی گستاخی کر رہی ہوں, میں جواب دے رہی ہوں کیونکہ میں یقین نہیں رکھ سنتی. میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں مانی, اس کو پوجوں اس کو پوجوں کیا ہے من مانی. دولت پوجا, کرسی پوجا اور لہو پوجا, پتھر پوجا, گھر کی پوجا اور پشو پوجا. جو کچھ ہے بس ایک وہی, بس ایک وہی نادان. جو کچھ ہے بس ایک وہی, بس ایک وہی نادان. انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان. اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو, بڑی گناہوں سے بچ جاؤ, بات میری مانو. جس کے ذریعہ انسان آج دعائیں پاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے. جو کچھ ہے بس ایک وہی, بس ایک وہی نادان. انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان. اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو, بڑی گناہوں سے بچ جاؤ, بات میری مانو.
بسم اللہ ابن الشیطان الرجیم. تو تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو گیا کہ اگر دل کھلا ہو انسان کا اور وہ اللہ سے مدد مانگے تو بات سب کو سمجھ آتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. سمجھ.